मदन ने वो पत्र पढ़ के चंद्रहास और विषया का विवाह बड़े धूमधाम से किया। उस विवाह संस्कार का वर्णन ने पिछले बार किया था। इसमें जैमिनी काफी एलिबरेट डिटेल्स दे रहे हैं कि क्या क्या विधियां की थी। और उस जमाने में विवाह के साथ साथ वर को कन्या के साथ साथ बहुत सारा दहेज भी दिया जाता, वो वॉलेंटरी हुआ करता, स्वेच्छा से, बलपूर्वक उस समय प्रथा नहीं थी। कलयुग में वो प्रथा दूषित हो गई और फिर भारत सरकार ने उसके ऊपर बैन लगा दिया। जब कोई भी चीज मिसयूज होती है या अब्यूज होती है कोई सिस्टम, तो फिर भगवान कुछ अरेंजमेंट करते हैं उसको कंट्रोल में लाने के लिए। लेकिन प्राचीन समय में स्वेच्छा से कन्या का बड़ा भाई या तो फिर उसका बाप, यहां चूंकि विषया के पिताजी दुष्ट बुद्धि दूसरी नगरी में थे, चंद्रावतीपुरी गए थे, चंद्रहास के नगर में गए थे और चंद्रहास को यहां भेजा था, तो मदन ने अपने पिताजी की अनुपस्थिति में एक पिता के करने योग्य जो भी और बड़े भाई के जो भी कर्तव्य होता है अपनी छोटी छोटी बहन के प्रति उसके विवाह के दौरान, वो सब कुछ किया और बड़ी बात ही किया। मदन ने बड़े उत्साह से, बड़े हर्ष के साथ और बड़े प्रेम के साथ अपनी छोटी बहन की शादी चंद्रहास से कराई। और जैसे मैंने पिछली बार वर्णन किया था, क्योंकि मदन खुद एक वैष्णव था, अपनी छोटी बहन का विवाह एक वैष्णव से करने में बड़ा हर्षित था, वो आनंद समा नहीं पा रहा था उसका, तो उसने दिल खोल के दहेज दिया। उसने चंद्रहास को बहुत से आभूषण, घड़े भर दूध देने वाली गायें और दूध के समुद्र जैसी बहते हैं, या वर्णन किया है कि जैसे दूध का समुद्र बह रहा है वैसी जो इतना दूध देने वाली भैंसे, बहुत सारे निर्मल मोती, रत्न, सुवर्ण इत्यादि दिए। वैसे चंद्रहास के पास धन की कमी नहीं थी, लेकिन ये विवाह के दौरान एक प्रथा हुआ करके, यहां तक कि कन्या के साथ उसके दातिया भी साथ में जाती थी। उसका वर्णन हमने पहले ये जाति की कथा में किया, और अर्जुन का प्रमीला के साथ जो विवाह हुआ था, यहां इसी जैमिनी अश्वमेधा ने जो वर्णन किया था, जो सब विष कन्याएं थी, हमने पहले वर्णन किया था, वो एक नगर में प्रवेश करते हैं अर्जुन जहां सभी विष कन्याएं रहती थी। उस समय प्रमीला की हजारों दासियां, उस समय क्योंकि प्रमीला का विवाह अर्जुन का सत्ता होता है तो सब दासियां उनके साथ जाती। तो रत्न, वस्त्र, अगुर, कपूर, चंदन इत्यादि प्रचुर मात्रा में धन, अनेक प्रकार का धन मदन ने दिल खोल कर दिया। इतना करने के बाद भी मदन संतुष्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि मदन इतना ज्यादा कर्तव्य परायण था और इतना ज्यादा उसका दान वृत्ति था, खास करके चंद्रहास के प्रति, क्योंकि वो समझता था कि चंद्रहास एक उत्तम कोटि का वैष्णव है, ये हरि का प्रिय जन है, ये बात मदन को अच्छी तरह से पता था, इसलिए बुद्धिशाली था। वो चंद्रहास को प्रसन्न करने में किसी भी प्रकार की कसर नहीं छोड़ना चाहता। वो अच्छी तरह से जानता था कि यदि मैंने चंद्रहास को प्रसन्न किया तो मेरा जीवन धन्य है। तो मदन का यह सौभाग्य था कि उसके पास ऐसी बुद्धि थी। वैसे चंद्रहास को इन सब चीजों में कोई रुचि नहीं थी। वो जैसे जैसे श्री हरि उनको जो जो धन दे देते थे या उसे ले लेते थे, उसकी परवाह नहीं करते। चंद्रहास के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव हमने देखे, एक ही स्टोरी में इतने सारे ट्विस्ट और यू टर्न्स हैं कि कोई नॉवेल भी इसके साथ तुलना नहीं कर सकता। तो नॉवेल में भी इतने यू टर्न्स और इतने ट्विस्ट नहीं आते स्टोरी में, इतना इसमें थ्रिल है। तो मदर सोचने लगा इतना करने के बाद भी कि मैं चंद्रहास को क्या दिया, उसने अपना आधा पोस्ट खाली कर दिया मदन ने, लेकिन फिर भी उसको